मैं कहाँ जाऊँगा, जगह नहीं है।
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
सब ठीक हो। सॉरी आने में देर हो गई, सुबह भगवत क्लास का प्रवचन था जून में, उससे पहले मैं कार्यक्रम में था। हरे
Yeah. Thank you. પરમ પૂજ્ય ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ
કી कृष्ण ही भक्त की सहायता करते हैं। सुनीति ने इस पर भी बल दिया कि भगवान तक पहुंचने की क्रिया सरल नहीं वरन आध्यात्मिकता में बढ़े चढ़े ऋषि तक इसकी खोज में रहते हैं। सुनीति ने यह भी बताया कि ध्रुव महाराज अपनी 5 वर्ष के छोटे बालक हैं, अतः कर्मकांड द्वारा अपने आप को शुद्ध कर पाना उसके लिए संभव नहीं, किंतु भक्ति योग की विधि से 5 वर्ष से भी कम आयु का बालक या किसी भी उम्र का व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। भक्ति योग की यही विशिष्ट महत्ता है, अतः उसने उन्हें देवताओं की या अन्य किसी विधि की पूजा करने की सलाह नहीं दी, उन्हें केवल भगवान की शरण में जाने को कहा जिससे सिद्धि प्राप्त हो सके। जो ही मनुष्य अपने हृदय में भगवान को बसा लेता है हर काम सरल हो जाता है और सफलता मिलती है।
बड़ा अच्छा श्लोक और पूरा सार प्राप्त हो जाता है। ओम ज्ञानेन्द्रस्य ज्ञानञ्जन चक्रनिर्मलेन तस्मै श्रीचैतन्यमनोविष्णवे स्वयं रूपे वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपादकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीगुरु सबका उद्देश्य है कि उस स्थिति पर पहुंचे जबकि हमारा मन ये है ये कहे इस सदा हरि नाम का उच्चारण करते रहो। ये जो महत्वपूर्ण श्लोक आपने सुना इसका उच्चारण सुनीति माता कर रही है और ये उपदेश इसको दे रही है अपने पुत्र ध्रुव को। भगवतम के 34 स्कंद में अब ध्रुव महाराज की कथा पढ़ते हो। वैसे तो आप सब इस कथा से परिचित हो और भागवतम की लगभग सारी कथाओं से परिचित हो, पर इन कथाओं को बार बार सुनकर हमारे शुद्ध मन और बुद्धि शुद्ध हो जाते हैं। तो ध्रुव महाराज के पिता का नाम था महाराज उत्तानापद, जिनकी 2 पत्नियां थीं सुनीति और सुरुचि। 2 पत्नियों से उनके 2 पुत्र थे। सुनीति का पुत्र था ध्रुव और सुरुचि का पुत्र था उत्तम। तो एक दिन ध्रुव ने देखा क्योंकि पिता की गोद में एक तरफ उनका सुतेला भाई उत्तम बैठा हुआ है और पिता का आकर्षण था ज़्यादा सुरुचि के प्रति। सुरुचि पति के साथ बैठी थी, उसका बेटा पिता की गोद में बैठा हुआ था। तो ध्रुव ने जब देखा मेरा भाई वहाँ बैठा है तो उसने सोचा दूसरी तरफ मैं बैठ जाता हूँ। तो ध्रुव ने प्रयास किया कि पिता की गोद में बैठे, पर सतेवी माँ सुरुचि के हृदय में ध्रुव के प्रति ईर्ष्या था, ईर्ष्या का भाव बड़ा भयंकर है। तो जब ध्रुव प्रयास कर रहा था पिता की गोद में पहुँचने तक, तो सुरुचि ने इन्हें नीचे घसीट लिया और कहा कि जब तुम्हें भगवान की कृपा हो तो तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे, फिर तुम ये उम्मीद कर सकते हो कि तुम पिता की गोद में बैठोगे। दूसरे शब्द में वो कह रही थी, अगर राजगद्दी में भी बैठना है तो तुम्हें ये शरीर त्याग कर भगवान की कृपा हो तो फिर मेरे गर्भ से जन्म लेना, फिर तुम्हें ये सुविधा प्राप्त होगी। और सुरुचि ने इतने जोर से बोला कि महल में जितने नौकर थे सब ने सुन लिया, और उनके पति पुत्र तनापा चुप रहे। इसको इंग्लिश में कहते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड। जबकि पति कुछ नहीं कहता, पत्नी को राज्य करने देता है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड, जिसमें कोई शक्ति नहीं होती। तो महाराज रतनाफा एक उसके हैंड पैक थे। पत्नी ने इतनी जोर से डांटा ध्रुव को, वो चाहते तो पत्नी को कह सकते थे क्यों डांट रहे हो इन दोष बालक को, पर वो चुप रहे। ध्रुव ने इसका बड़ा अपमान महसूस किया, क्षत्रिय खून था, अपमान महसूस किया और रोते रोते कहाँ गए, अपनी माँ के पास। माँ के पास जब पहुँचे, माँ को सूचना पहुँच चुकी थी पहले से ही, नौकरों ने आकर कह दिया था आज बड़ी मेम साहब ने बहुत डांटा तुम्हारे बेटे को। तो उनको सूचना आगे ही पहुँच गई। तो माता ने कहा मैं तो तुम्हारा सहयोग नहीं ले सकती, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझे नौकरानी का आदर भी नहीं देते। कोई है जो व्यक्ति मेरा सहयोग दे सकता है? ध्रुव के मन में यह भाव आ गया, मेरी सतोजी माँ ने मेरा अपमान किया, मुझे अभी ऐसी तपस्या करनी चाहिए कि मुझे एक राज्य प्राप्त हो। पिता क्या, दादा, पर दादा के राज्य से भी ज़्यादा बेहतर। तो सुनीति जो है यहाँ उपदेश दे रही है अपने बेटे ध्रुव को। वैसे तो ध्रुव ने निर्णय कर लिया था भगवान को खोजने के लिए, भगवान को तपस्या के माध्यम से आकर्षित करने के लिए। अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो तपस्या की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे तो भगवान अधोक्षजा हैं, अधोक्षजा समझते हो, जिसको समझना बड़ा कठिन है। तो भगवान को समझना इतना सरल नहीं है, पर भगवान जी कहते हैं तपस्या परम ज्योति भगवतम अधोक्षजा, पर तपस्या के माध्यम से आप भगवान को भी आकर्षित कर सकते हो। ध्रुव ने निर्णय कर लिया था यह मुझे भगवान को खोजने के लिए कहाँ जाना है, जंगल जाना है। जब आप ब्रजमंडल परिक्रम करते हो, आप ऐसे कितने भक्तों ने ब्रजमंडल परिक्रम किया है? तो आखिरी दिन से, क्योंकि मैं हर साल जाता हूँ समाप्ति पर, आखिरी दिन से हम मधुबन जंगल में भी जाते हैं। तो वो जंगल है जहाँ के लोग ने तपस्या की थी। तो नारद मुनि आए, नारद मुनि ने कहा ए छोटा बालक कहाँ जा रहा है, ये तो भगवान को खोजने की आयु थोड़ी है, ये तो खेलने कूदने की आयु है। नारद मुनि क्या कर रहे थे, ध्रुव की परीक्षा ले रहे थे। जैसे इस कौन संस्था में अगर किसी को हरी नाम दीक्षा चाहिए हो तो पहले एक दो तीन साल राह देखनी पड़ती, क्यों, यह अनुभव किया जाता है ये विद्यार्थी कितना गंभीर है भगवान को समझने में, इधर भक्ति के लक्षण है या नहीं। तो नारद मुनि भी परीक्षा ले रहे थे। जब नारद मुनि ने देखा कि इस बालक में बड़ा निष्ठ दृढ़ भाव है भगवान को प्राप्त करने के लिए, फिर उन्होंने उन्हें उपदेश दिया। क्या दिया? मंत्र दिया। कौन सा मंत्र? साथ में उन्होंने शिक्षा दी कि इस प्रकार भगवान का रूप बनाया जाए, साकार रूप मिट्टी और पानी से। उन्होंने किस प्रकार तपस्या करके भगवान को आकर्षित किया। तो आज के श्लोक में सुंदरी माता क्या कह रही है कि हे मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हें परम भगवान की शरण लेनी चाहिए। क्यों क्यों शरण लेनी चाहिए? क्या कहती है? क्यों क्यों कहती है? कि भगवान जो हैं बड़े दयालु हैं। किनके प्रति? उनके भक्तों के प्रति। वैसे तो भगवान सबके तरफ दयालु हैं। देखा जाए जो नास्तिक व्यक्ति है उन्हें भी भोजन मिलता है खाने के लिए कि नहीं? हाँ, कितने दयालु हैं। आप किसी सरकार का विरोध करो तो सरकार आपको एक दिन में जेल में डाल देती है। कई देशों में तो एक शब्द भी बोलोगे सरकार के विरोध में, बस 5 मिनट में जेल में पहुंच जाओगे। तो इतने व्यक्ति जो भगवान का विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, जब भी भगवान कुछ नहीं कहते। आज क्लास में बापू के बारे में आप पढ़ते हो तो एक लेख था कल के अखबार में जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म की इतनी आलोचना की कि हिंदू धर्म में तो ये सब चलता है। तो जो कोटेशन भगवान की लीला में, जब भी भगवान ने कुछ नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य है कई लोग गीता भागवत इत्यादि संदेश को भी लेते हैं, अपना भाव जोड़ देते हैं कि नहीं। तो भगवान अत्यंत दयालु हैं, जो उनकी निंदा करते हैं उनको भी सह लेते हैं। तो पर जो भक्त हैं उनके प्रति अत्यंत दयालु हैं। तो सुनीति माता क्या कह रही हैं कि आपको परम भगवान की शरण लेनी चाहिए। तो आज अगर समाज में इतनी समस्या देख रहे हो, उसका मूल कारण क्या है? हम भगवान की शरण में नहीं आ रहे। और भगवान की शरण में नहीं आओगे तो किसकी शरण में रहना पड़ेगा? हाँ, माया की। माया की शरण में रह कर सुख है क्या? भौतिक संसार में क्या है? क्लेश ही क्लेश। चाहे आप करोड़पति बन रहे हो, आज सुबह भागवतों की क्लास दे रहे थे जू में 5वें स्कंद के ऊपर, जिसमें नरकों का वर्णन है। आपने पढ़ा हुआ कभी? पढ़िए कभी, आपको पता लगेगा माया का क्या परिणाम करना पड़ता है। तो उसमें लिखा था कि आज हम वर्णन कर रहे थे उस नरक का, जहाँ व्यक्ति को जाना, वो व्यक्ति पहुँचता है जो कि बहुत धन कमाता है आवश्यकता से अधिक, और वो धन को का लाभ वही उठाना चाहता है, भगवान को नहीं देना चाहता। लक्ष्मी को रहना चाहिए नारायण के चरणों में, है कि नहीं? तो वो व्यक्ति सोचता है ये धन मेरे पराया से कमाया है, ये धन का भोगा मैं ही बनूंगा और हरे कृष्ण के भक्त आएंगे तो उनको भगा देंगे। ऐसा भाव रखता है ना। तो ऐसे लोगों को, और जो आवश्यकता से अधिक, जब श्रील प्रभुपाद जी 1972 में रशिया गए थे, हाँ उन दिनों में रशिया में कम्युनिज्म था, और कम्युनिज्म मतलब लोग कम्युनिज्म मान समझते हो कि सामान्य वह सब कुछ सरकार का ही है। तो प्रभुपाद जी ने वहाँ के एक बड़े प्रसिद्ध स्कॉलर थे डॉक्टर किटॉस्की, उसे प्रभुपाद की चर्चा हो रही थी। ये चर्चा एक ग्रंथ के रूप में भी प्रकाशित हुई है। तो उस चर्चा में प्रभुपाद जी ने कहा, आप कहते हो हर चीज सरकार की है, हमारा शास्त्र कह रहे हैं हर चीज के स्वामी परम भगवान है। प्रभुपाद जी ने ईश्वर पनिषद के श्लोक का उच्चारण किया, ईश्वर वशेषां सर्वम्, जिसमें भगवान कहते हैं उतना ही अपने लिए रखो जितना कि आवश्यक हो, उससे अधिक क्या करना चाहे दूसरों को दे दो, भगवान की सेवा में उपयोग करो। पर आज लोग क्या ये मानते हैं, आज तो जो धनी व्यक्ति हैं भारत के, उनके पास इतना धन है कि आगे 100 पीढ़ी तक किसी को काम नहीं करना पड़े। तो जब भी जब भगवान को चंदा देने का प्रश्न आता है तो उनको यही याद आता है कितने खर्चे करने हैं। तो इन व्यक्तियों का क्या परिणाम होगा, शुक्रदेव गोस्वामी समझाते हैं, वो नरक में जाएंगे जहाँ की यामदूत, यामदूत जानते हैं कौन है, यामदूत है यामराज जी के प्रतिनिधि। यामदूत उनको उनके पूरे शरीर में सुई से सीते हैं उनको, जैसे कि कपड़े को सिया जाता है। अंदाजा लगाओ अगर आपके शरीर को कोई सी रहा है। अगर आप जानना चाहते हो कि अलग अलग पापों का क्या परिणाम है, भगवतम के 5वें स्कंद को पढ़िए, खास करके नरकों का वर्णन। जब आप वो पढ़ोगे, अगर आप में थोड़ी भी बुद्धि होगी तो आप सुधर जाओगे। तो अगर हम भगवान की शरण नहीं लें तो किसकी शरण में रहते हैं, माया की शरण। और माया की शरण में रहने के द्वारा केवल क्लेश ही क्लेश, कष्ट ही कष्ट। भौतिक संसार में चाहे आप कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लो, क्या परिणाम है, क्लेश ही क्लेश, कष्ट ही कष्ट। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं निकलो ये भौतिक जगत से। भौतिक जगत का नाम है क्या, कुंता जगत। कुंता जगत का अर्थ क्या है, कष्ट क्लेश क्लेश। और भगवान के देव धाम का क्या नाम है, वैकुंठ धाम, जहाँ की किसी प्रकार की चिंता नहीं, चिंता रहित, और जहाँ कोई कष्ट नहीं। तो शास्त्रों का निर्णय क्या है, भगवान की शरण लो, ये है वैदिक शास्त्रों का निर्णय। आप भगवद गीता पढ़ो, भगवद गीता का क्या है निर्णय, अंत में भगवान क्या उपदेश देने हैं अर्जुन को, सब धर्मों को छोड़कर क्या करो, मेरी शरण में आओ। तो ये है शास्त्रों का निर्णय। और ये भाव बढ़ाने के लिए साधु संगत की आवश्यकता है। शास्त्र में इस विषय पर बल दिया गया है कि हमें साधु संगत में रहना चाहिए। चैतन्य चरितमृता जिसमें चैतन्य महाप्रभु जी की लीला और उपदेश का वर्णन है, कृष्ण और कविराज जी कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र काया, लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लाभ मात्र, एक सेकेंड का 1/14 हिस्सा, अभी घड़ी में इसे आप माप भी नहीं सकते, 1 सेकेंड का 14 हिस्सा। एक पल के लिए भी अगर आप शुद्ध भक्त की संगत मिल जाए तो आपका आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सकता है। तो साधु संगत में रहेंगे तो हमें ये सुनने में मिलेगा कि भक्ति का क्या महत्व है। भौतिकवादियों की संगत में रहोगे तो क्या सुनने में मिलेगा, भक्ति की क्या आवश्यकता। तो आप कहोगे ये तो संभव नहीं कि हम भौतिकवादियों की संगत में बिल्कुल नहीं रहे। ठीक बात, आपने नौकरी करना है, धंधा करना है, अब जब प्रचार करने जाते हो तभी भौतिकवादियों की संगत में आते हो। तो भौतिकवादियों की संगत उतना ग्रहण करो जितना कि अवश्य है, उससे अधिक नहीं, और बाकी समय काटो भक्तों की संगत में। प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन संस्था की स्थापना की, पहले केंद्र की स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में, प्रभुपाद जी ने रविवार के कार्यक्रम की भी स्थापना की, इसलिए कि भक्तों को मौका मिले रविवार को आकर भगवान का दर्शन लेकर आरती में उपस्थित होकर उपदेश सुनकर प्रसाद ग्रहण करके उनका आध्यात्मिक भाव बढ़े। तो सुनीति माता कह रही हैं बेटे से, ध्रुव ध्रुव से, ये भगवान की शरण लो, भगवान अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु हैं। भगवान ने इस विषय में अर्जुन से क्या कहा, हे अर्जुन तुम सारे विश्व को ये सूचना दो, क्या 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 था वो, क्या था वो संदेश? कौन से पद जाने ही मैं हमें भक्त, मेरा जो भक्त है कभी नष्ट नहीं होगा। अगर भगवान चाहते तो ये सूचना खुद दे सकते थे, सुनो मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा। तो भगवान ने क्या कहा, अर्जुन तुम ये सूचना दो, क्योंकि जब भक्त ये कहेगा उसका ज्यादा प्रभाव रहेगा। जब भगवान कहें तो लोग कहेंगे हाँ ये तो भगवान कह रहे हैं, तो भगवान जब ये भक्त कहे तो उसकी ज्यादा कदर होती है। और ये भाव भौतिकवादियों ने भी इसकी नकल की है। अब देखते हो ना हर जगह अमिताभ बच्चन की फोटो, ये खरीदो ये खरीदो ये खरीदो, है ना, देखते हो। हाँ तो वो कहने के लिए 6-7 करोड़ रुपए लेते हैं, पर लोग उनके कहने पर लोग लेते हैं, इसी लोग इतनी रकम दे रहे हैं। तो ये भाव इनको कृष्ण भगवान से पता लगा। जो भगवान ने अर्जुन को कहा पहले तुम सूचना दो, जो कुछ कंपनी का मालिक है वो भी कह सकते हैं मेरा माल खरीदो, तो वो कहते नहीं नहीं अमिताभ बच्चन को कहने दो, तो उसकी ज्यादा कदर होती है। तो उनको पैसे देते हैं, कहते तुम बोलो हमारा माल अच्छा है ना। तो ये भाव उन्होंने कहाँ से सीखा, भगवान ने अर्जुन को कहा तुम संदेश दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा। तो भगवान ने अर्जुन से कहा मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा, तो ये अर्थ नहीं कि भक्त को कभी कठिनाई अनुभव नहीं करनी पड़ती, ये अर्थ नहीं कि जिस चीज को भक्त छूता है वो सोना बन जाता है। मतलब तो भक्त जो है कठिन परिस्थिति में भी भगवान के चरण कमलों को नहीं भूलता। तो सुनीति माता कह रही हैं परम भगवान की शरण लो, जो अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। आगे कहती हैं जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहता है उसे क्या करना चाहिए, भक्ति योग के मार्ग को स्वीकार करना चाहिए। सारे शास्त्रों का निर्णय क्या है, भक्ति योग एक उपाय है। अनेक धर्म के प्रचारक हैं पर देखा जाता है ये धर्म के प्रचारक अक्सर अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, भगवान के विचारों को नहीं। इसीलिए जब श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता को प्रकाशित किया, उन्होंने किस नाम से प्रकाशित किया, हाँ यथारूप। तो कई बार लोग आपसे भी पूछते होंगे इस गीता और दूसरे गीता में क्या अंतर है, और प्रभुपाद इसकी चर्चा करते हैं भूमिका में। प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि उन्होंने उसी विचारधारा से भगवान के संदेश को प्रस्तुत किया है जिस विचारधारा से भगवान ने बोला और अर्जुन ने स्वीकार किया। तो यहाँ सुनीति माता कह रही हैं जिन्हें जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा चाहिए। श्री प्रभुपाद जी के जो पिता थे उनका नाम था गौर मोहन देव, वो मिडिल क्लास कपड़े के व्यापारी थे, कोई बड़े सेठ नहीं थे, पर उनमें ये भाव रहता था संतों की सेवा करने का। तो संतों को बकायदा घर निमंत्रण देते थे, भोजन खिलाते थे, सेवा करते थे। तो एक समय प्रभुपाद जी के एक मित्र थे, उस समय प्रभुपाद स्कॉटिश कॉलेज कैलकटा में विद्यार्थी थे। उन दिनों में स्कॉटिश कॉलेज का बड़ा ऊंचा नाम था, सारे प्रोफेसर स्कॉटलैंड से आते थे। तो प्रभुपाद जी के एक मित्र ने कहा यहाँ एक बहुत बड़ा संत है, मैं चाहता हूँ तुम उससे मिलो। प्रभुपाद जी उस वक्त गांधी जी के स्वतंत्रता के आंदोलन के सदस्य थे। तो प्रभुपाद ने कहा मैं किसी संत को नहीं मिलना चाहता, मैं बहुत संतों को मिल चुका हूँ, किसी से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ। तो इस मित्र ने कहा तो ये खास संत है, तो उनको ले गए भक्ति सिद्धांत जी को मिलने। भक्ति सिद्धांत जी ने देखा पहली मुलाकात में भक्ति सिद्धांत जी पहचान गए, ये है वो व्यक्ति जो चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी को पूरा करेगा। क्या क्या थी चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी? किसी बच्चे से नगर है, गांव है, सदर है, क्या यह हरिनाम पहुंचेगा? और कई वर्षों में ये श्रद्धा नहीं थी, पर भक्ति सिद्धांत जी और ठाकुर भक्तियों को पूरा विश्वास था ये सत्य निकलेगी। आज मुझे एक भक्त आए, सुबह हर रविवार को क्लास में आते हैं, तो पिछले हफ्ते वो अर्जेंटीना देश में थे। अर्जेंटीना नाम सुना जाता है, बहुत दूर है, हम न्यूयॉर्क से भी और 6 घंटे। तो पिछले हफ्ते हमारे मंदिर में गए थे अर्जेंटीना में, और एक भारत का एक्सपोर्टर्स का डेलीगेशन गया था, तो कईयों को लेकर वो गए थे मंदिर। तो कह रहे थे वी वर शॉक्ड, हम हैरान हो गए थे, ऐसा भाव भक्तों में था, इतना उत्साह था, इतनी अच्छी तरह लोगों का उच्चारण कर रहे थे, उनके साथ जो लोग है वो तो हैरान हो गए। ये है प्रभुपाद जी का प्रयास। तो हाँ, भक्ति सिद्धांत जी ने पहली मुलाकात में ही प्रभुपाद से कहा, तुम पढ़े लिखे युवक हो, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देश में। तो प्रभुपाद ने कहा, हमारा देश गुलाम देश है, उसे स्वतंत्र बनने दो, फिर लोग सुनेंगे इस संदेश को। तो भक्ति सिद्धांत जी ने उत्तर में कहा, असली स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा। तो यहाँ सुनीति क्या कह रही है, जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा चाहते हैं, आज के समाज में समस्या क्या है? आज के समाज में समस्या यह है कि भविष्य के विषय में कोई विश्वास ही नहीं करता, बहुत कम लोग, क्योंकि वो आत्मा सनातन है, इस पर विचार करना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये विचार करेंगे कि आत्मा सनातन है तो ये भय होगा कि जो पापों का कार्य हो रहा है उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। साधारण भौतिक व्यक्ति का क्या सिद्धांत है, खाओ पियो और लियो, कल किसने देखा? क्या प्रमाण है आत्मा सनातन है? क्या प्रमाण है नरक है स्वर्ग है कि नहीं? तो वो कहते हैं जितना लूटना है लूट लो। आपके राजनीतिक नेता इतना लूटते हैं कि 1000 पीढ़ी तक से उनको प्रयास नहीं करना पड़े, पर जितना लूटना है लूट लो, कोई चिंता नहीं। ये है अज्ञानता का लक्षण। तो आत्माएं हैं सनातन, जैसे भगवान गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, जिस प्रकार हम अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक देह को त्याग कर अगला देह स्वीकार करती है। और ये कैसे निर्णय किया जाता है, कारण न देव नहीं तो न जंतु देव पपत। देवहूति ने अपने बेटे कपिला देव से पूछा, बेटा ये बताओ कैसे निर्णय किया जाता है कि किस प्रकार का ध्येय हमें प्राप्त होगा? जिसके उत्तर में बेटे ने कहा, बेटा भगवान का अवतार था, उन्हें पता था मेरा बेटा स्वयं भगवान है। उन्होंने कहा, कर्म देव नेतृण, हमारे सब कार्य के अनेक साक्षी हैं और कर्म के आधार पर यह निर्णय किया जाता है किस प्रकार का ध्येय आपको प्राप्त होगा। किसके आधार पर? कर्मों के आधार पर। तो यामुना जी हम सब के कार्यों का ध्यान रखते हैं, उनका नहीं जो कृष्ण भक्ति में आ जाते हैं, वो फिर उनका ध्यान भगवान स्वयं करते हैं। तो भगवान यहाँ कहा जा रहा है, जिन्हें जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा चाहिए उन्हें भगवान के चरण कमलों को स्वीकार करना चाहिए। किस माध्यम से? भक्ति योग के माध्यम से। जब आप भक्ति योग शब्द को सुनते हो तो इसका अर्थ क्या? भक्तियों का संक्षेप में अर्थ यह है, प्रेम के साथ भगवान की सेवा में जुड़ना। भगवान ने आपको मन दिया है, बुद्धि दी है और क्या इंद्रियां दी है, इनका उपयोग करो भगवान के सेवा में। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान से पूछा, ये कैसे है कि जानते हुए भी हम गलत कार्य कर लेते हैं? हम जानते हैं ये गलत कार्य है, जब ये हम करते हैं। जिसके उत्तर में भगवान ने क्या कहा, कामन देवा नहीं नहीं काम ऐसे क्रोध ऐसे राज्य को समझ लो। भगवान ने कहा काम ये है, वो इसका निवास का स्थान कहाँ है, मन बुद्धि इंद्रियों में। फिर आगे भगवान ने कहा ज्ञान के तलवार से इसे क्या करो, नष्ट करो। जिस प्रकार रोशनी से अंधेरापन दूर होता है, उसी प्रकार ज्ञान से क्या दूर होता है, अज्ञानता। हम सब जन्म लेते हैं अज्ञानता में, ठीक है, फिर हम पाठशाला में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान प्राप्त करते हैं, बड़े वैज्ञानिक बन जाते हैं, पर पैदाइशी में यह ज्ञान था। उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान भी हम अनुकूल करते हैं साधु की संगत के द्वारा, और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुकूल करके हम समझ पाते हैं किस प्रकार से भक्तियों का पालन करना चाहिए। और संक्षेप में भक्तियों का पालन का अर्थ है भगवान की शिक्षा का पालन करना। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम के उच्चारण पर बल दिया, क्यों, क्योंकि शास्त्रों का निर्णय है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम जब भागवतम में शुक्रिय परीक्षित महाराज ने नरकों का सुना, अलग अट्ठाईस अलग अलग नरक के लोग हैं, तो परीक्षित महाराज घबरा गए, क्यों, उन्हें अपनी चिंता नहीं थी, उनको चिंता थी किस प्रकार ये बच सकते हैं नरक में जाने से। तो उन्होंने शुक्रदेव गोस्वामी से पूछा, कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि नामश्रानीय में एक बड़ी सभा चल रही थी 5,000 साल पूर्व। आप गए हो नामश्रानीय लखनऊ के, मैं तो कभी नहीं गया। तो नामश्रानीय में संतों की सभा चल रही थी, विषय था किस प्रकार लोगों का उद्धार होगा आप कलयुग में। यह है साधुओं का भाव, अपना स्वार्थ नहीं समाज का स्वार्थ। भगवान के जो भक्त हैं वो प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं समाज के स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। तो संतों ने ये भी कहा था कि कलयुग का एक लक्षण यह होगा कि लोगों की अध्यात्मिकता में बहुत कम रुचि होगी, रुचि है भी तो नाम के लिए, हाँ दिखावे के लिए। लोग मंदिर जाते हैं, यह चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, शुद्ध भक्ति में बहुत कम लोगों का भाव रहता है। तो कलयुग के लक्षणों का वर्णन है, और अगर आप उनको पढ़ोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि भगवत की रचना कल हुई थी। मैंने कई बार विदेशों में भी भक्तों से चर्चा की है कलयुग के लक्षणों का, जिनका वर्णन है भागवतम में। जब भौतिकवादी लोग भी सुनते हैं वो क्या कहते हैं, ये तो लगता है कि कल ही किसी ने रचना की। ये रचना की थी कब, 5,000 साल को। इन संतों में ऐसी योग्यता थी, जैसे आप जोशी के पास जाते हो जानने के लिए क्या होगा, इनके पास ये योग्यता थी देखने के लिए कि भविष्य में क्या लक्षण होंगे। तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा, जिसके उत्तर में शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा, कले दोषे निधे राजन, हे राजा कलयुग दोषों से भरा हुआ है, सच झूठ हाँ सच झूठ दो सिर्फ विदेशों में कि भारत में भी है। हाँ भारत के किसी गांव में भी चला जाओ उतना ही दोष है जितना बड़े शहरों में। तो कलियुग में दोष ही दोष है, प्रेम गुण है कलियुग में। कीर्तन है देव कृष्ण से मुक्त संग परम जय कृष्ण का कीर्तन। तो ये शास्त्रों का प्रमाण है कि कृष्ण का कीर्तन ये एक उपाय है कलियुग में भगवत प्राप्ति के लिए। इसलिए आप भक्तों से सदा यही निवेदन किया जाता है चैंट हरे कृष्ण है कि नहीं। जब ये संस्था शुरू हुई थी न्यूयॉर्क में तो वहाँ के एक बड़े प्रसिद्ध अखबार में एक कार्टून छपा था जिसमें पति और पत्नी बैठे थे। पति कह रहा था चैंट 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 और पत्नी कह रही थी कैन कैन कैन। हिंदी में ये नहीं सच था और अंग्रेजी में सच था चैन 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 कैन कैन कैन। पति कह रहा था जाप करो जाप करो जाप करो। पत्नी कह रही नहीं नहीं नहीं। तो हम तो सबसे निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर है नाम को अपनाओ सोला माला करो जाप करो जीवन को सुधारने का प्रयास करो। कई तो स्वीकार कर लेते हैं कई नहीं करते हैं। पर भक्तों में कर्तव्य बनता है कि वो करते जाएं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आपको जन्म मृत्यु के बंधन से छूट चाहिए तो क्या करना चाहिए। हमें भगवान की शरण स्वीकार करनी चाहिए भक्ति योग के माध्यम से और अपने कर्तव्य को निभा कर तुम शुद्ध बन सकते हो। जैसे कि हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ कर्तव्य है कार्य है। शास्त्रों के अनुसार चार वर्ण चार आश्रम होते हैं। चार आश्रम है ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ में चार वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो सबके कुछ कार्य हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया तस्मा सर्वेश क्लेश हे अर्जुन मेरी खुशी के लिए हार जीत का सोचे बिना क्या करो क्या करो इस युद्ध में करो। तो उसी प्रकार अर्जुन तो क्षत्रिय खून के थे खानदान के थे। सबके अलग अलग कर्तव्य हैं वो निभाओ और किसकी खुशी के लिए। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं यत् करोषि यत् दृष्णासि यज्जहोषि राधयत् यत् तपस्वति कौन्तेया तत् करिष्यामि। भगवान कहते हैं जो भी तुम करो मेरी खुशी के लिए करो। कार्य करो नौकरी करो धंधा करो डायमंड का धंधा करो जो करो मेरे लिए करो। जो दान देना मेरे लिए करो। जो भोजन खाना है पहले मुझे अर्पण करो। फिर इस प्रकार इस चेतना से इस भाव से कार्य करने से आपका शुद्ध हृदय क्या हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा। तो सुनीति माता कह रही हैं कि हृदय को शुद्ध बनाओ और एक पल के लिए भी भक्ति के मार्ग से विचलित मत हो और हमेशा भगवान की सेवा में जुड़े रहो। ये होना चाहिए एक पल के लिए भी नहीं। ये नहीं हाँ रविवार का मंदिर हो आए हफ्ते का कोटा खत्म बाकी साढ़े छः दिन हम भौतिक कार्य में जुड़ेंगे फिर इतवार को फिर चले जाएंगे। जैसे कई लोग क्या सोचते हैं हिंदू लोग कुंभ मेला आएगा स्नान करने चले जाएंगे स्नान करके सारे पापों को धो देंगे फिर आठ साल के लिए दुनियादारी करेंगे अगले अगले को माएगा फिर स्नान कर लेंगे है कि नहीं। हम तीर्थ के स्थान में जाते हैं इस भावना से हाँ तीर्थ के स्थान में जा रहे हैं पापों को वहाँ छोड़ाएंगे फिर नए पाप करेंगे फिर वृंदावन की यात्रा फिर लगा देंगे। तो यहाँ सुनीति माता कह रही है विचलित हुए बिना सदा भगवान की सेवा में रहो। दूसरे शब्दों में हमारे जीवन का उपयोग इस प्रकार होना चाहिए कि हम सदा भगवान की सेवा में रहें। समय जो है भगवान का प्रतिनिधि है, टाइम इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड। चाणक्य पंडित ने कहा है, चाणक्य पंडित का उपदेश शास्त्रों के उपदेश समान माना जाता है, इसलिए हमारे आचार्यों ने चाणक्य पंडित के उपदेश का उपयोग किया है अपने प्रचार में। तो चाणक्य पंडित क्या कहते हैं, ईश्वर कशा में एक पीना लबया स्वर्ण कोटी भी। सारे विश्व के धन से आप अगर एक पल का भी दुरुपयोग करोगे उसे वापस नहीं ला सकते। तो सुनीति माता का जो उपदेश है ये हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। सच झूठ आपके लिए भी है, आपका कहिए तो ध्रुव के लिए, हमारे लिए थोड़ी है। ध्रुव के माध्यम से सुनीति माता मीना रोग के भक्तों को उपदेश दे रही हैं। ये उपदेश खास करके आप लोगों को है, मीना रोग के भक्तों को कह रही हैं। क्या कह रही हैं, भगवान की शरण लो, भक्तियों को स्वीकार करो, एक पल के लिए विचलित मत हो और हमेशा उनकी सेवा में जुड़े रहो। ये संदेश खास करके आप भक्तों के लिए। तो हमें ये निर्णय करना चाहिए कि हमने भक्तियों के मार्ग में जुड़े रहना है और चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से ये मार्ग बहुत सरल हो गया है। क्या है मार्ग, भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल बना दिया है। जैसे कई बार बाजार में आप देखते हो बिग बाजार, वो जो बड़ा बड़ी दुकान है उसके एडवर्टाइजमेंट में स्पेशल सेल 80% छूट 70% छूट, हाँ तो सब पहुंच जाते हैं खरीदने के लिए। तो इस कलयुग में भगवान ने बहुत बड़ी छूट दी है। सतयुग में भगवत प्राप्ति के लिए 60-70 हजार भगवान का चिंतन करना पड़ता था, वही लाभ को इस कलयुग में प्राप्त हो सकता है भगवान के नामों का उच्चारण करके। तो हम सबको भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र में कहा गया है भगवान के नामों के उच्चारण के 3 स्टेजेस हैं। हाँ, पहला स्टेज वो है जब आप जाप करते हो और साथ में आप प्रार्थना भी करते हो। तो दूसरा है नाम भाषा, आप जाप कर रहे हो तो प्रयास कर रहे हो अपराधों से बचने के लिए। और तीसरा है शुद्ध नामा, बिल्कुल शुद्ध भाव से जाप कर रहे हो। तो जाप का लाभ तो हर स्थिति में है, पर जाप का पूरा लाभ है तो ध्यान पर जाप करो। कम से कम जब जाप करने बैठते हो जाप पर ही ध्यान दो, यानी कि जाप के साथ 50 और कार्य भी करोगे। तो भक्ति योग एक माध्यम है जिसके द्वारा आप परम भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। ये भक्ति योग का आरंभ होता है भगवान के नामों के उच्चारण से। तो सुनीति देवी कह रही हैं भक्ति योग का लाभ उठाओ। और प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य की समाप्ति में कहते हैं इस भक्ति योग का लाभ एक 5 साल का बालक भी उठा सकता है। सुनीति ने ये नहीं कहा आपके लिए देवता की पूजा करो, है ना। सुनीति ने ये कहा अब परम भगवान श्री कृष्ण की शरण लो। और 5 साल के बालक ने अपनी तपस्या के माध्यम से परम भगवान को आकर्षित किया। जब भगवान ने अपना दिव्य रूप से प्रकट हुए और भगवान ने कहा मांगो ध्रुव क्या चाहिए, ध्रुव ने क्या कहा, निकला था हीरे डायमंड हीरे की खोज में, नहीं हीरा था पत्ते टूटे हुए शीशे की खोज में, अब मुझे असली हीरा प्राप्त हो गया। तो असली हीरा है क्या, भक्ति योग। आप तो हीरा के व्यापारी हो, है ना। तो असली हीरा है क्या, भक्ति योग। और हीरे के विषय में आप जानते हो जितना रगड़ोगे उतनी ज्यादा चमक आएगी, है ना, है कि नहीं। आप लोग का बिजनेस ये है हीरे को चमकाना। तो असली हीरे को चमकाओ, वो संभव हो पाएगा कैसे? महामंत्र के उच्चारण। तो सब भक्तों को निर्णय करना चाहिए, सोलह माला का जाप, गीता भगवत का अध्ययन, साधु संग का लाभ और भगवान के प्रचार में सहयोग दीजिए। अब राधा गिरधारी का महल तैयार हो रहा है ना, भगवान का घर तो महल होना चाहिए, महल के समान नहीं। बहुत एक समाज में आप देखते हो कि जैसे कोई व्यक्ति थोड़ा धन कमाता है पहले क्या सोचता है, मकान बनाओ, मकान फिर हाँ। मैं कई साल पहले दुबई में था तो मैंने देखा कि कोने कोने में मस्जिद है, आप 10 कदम चलोगे मस्जिद दिखेगा। अगर आप केरला में जाओगे तो हर 10 कदम में आपको एक चर्च दिखेगा। एक जमाना था जब दक्षिण भारत की पूरी प्रजा वैष्णव बन गई थी महाप्रभु के प्रचार से। आज आप जाओ खास करके केरल में हर 10 कदम में एक चर्च, 10 कदम में। मैं एक समय क्रिसमस के दिन केरला में था और मैंने देखा जैसे आपके मंदिर में जन्माष्टमी को लाइन होती है, हर चर्च के सामने इतनी बड़ी लाइन थी। मैं तो हैरान हो गया, लोग आपके एक बजे तक लाइन में खड़े थे चर्च के अंदर। एक चर्च हमारे यहाँ तो एक ही मंदिर है ना, ये बॉम्बे में चार होना है, वहाँ तो हर चर्च के साथ आदमी लंबी लाइन। तो हमें प्रचार भी करना चाहिए। तो ये जो जैसे कोई तो महा में दुबई का कह रहा था तो मैंने किसी भक्त से पूछा कि हर 10 कदम में एक मस्जिद है, ये मस्जिद क्या सरकार बनाती है? उन्होंने कहा नहीं, ये लोग मुसलमान लोग बनाते हैं। जैसे वो धन कमाते हैं अपने घर बनाने से पहले भगवान का घर बनाते हैं और फिर अपना घर बनाते हैं, ये अच्छा भाव है। तो हमें इस भाव से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये जो राधा गिरधारी जी का मंदिर बन रहा है ये किसी किसकी खुशी के लिए बन रहा है? हाँ, भगवान की खुशी के लिए। और यहाँ कौन निवास करेंगे? राधा गिरधारी जगन्नाथ सुभद्रा बलराम गोविंदा। तो ये मंदिर बन रहा है आप सब भक्तों के सहयोग से। आप सब में कितने भक्तों जो कि सहयोग देते आए हो इस मंदिर को बनाने में? बस बस सब नहीं, मैं तो सदा सब हाथ उठाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं अभी मौका है कुछ करने का, फिर आप कह सकोगे बाद में ये मंदिर हमने बनाया। नहीं, अगर आप कुछ सहयोग नहीं दोगे तो आपका नाम नहीं लिखा जाएगा। भगवान की किताब में उन भक्तों का ही नाम रहेगा जिन्होंने प्रयास किया है इस मंदिर को बनाने में, है कि नहीं? भगवान तो हर कार्य के साक्षी हैं। तो कई योजनाएं हैं स्क्वेयर फीट वगैरह जिसके माध्यम से आप लोगों को जोड़ सकते हो। आपको शायद पता है कि पुणे में 6 महीने पहले नए मंदिर का उद्घाटन किया था और राष्ट्रपति को हम लाए थे। तो पुणे मंदिर बनाने में 20,000 लोगों ने दान दिया, नहीं मैं कहते 40,000 लोगों ने दान दिया था। और ये 40,000 लोगों को किसने जोड़ा? जोन के गृहस्थ कॉन्ग्रीगेशन के भक्त है आप जैसे, जो आप जैसे भक्त है वो घर घर गए, लोगों का स्क्वेयर फुट करो ये करो, वो इस प्रकार सारा धन इकट्ठा किया मंदिर बनाने का। तो मेरे ख्याल से जितना उत्साह पुणे के भक्तों में था उतना उत्साह आपने अभी तक पकड़ किया है नहीं? हाँ, क्या कहते हैं हमारे हर्ष गोविंदर, सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं सेवा में नहीं? तो मैं खास रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं ये रिक्वेस्ट करने आया नहीं, आया तो था संदेश देने, पर मैं ऐसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर को जल्दी से जल्द तैयार करें, और मंदिर को तैयार करने में थोड़े धन की भी आवश्यकता रहती है। सच बात है, प्रभुपाद जी गीता में कहते हैं लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, आपको जमीन चाहिए किसी चीज को बनाना है, धन चाहिए, आदमी चाहिए और मैनेजमेंट की योग्यता चाहिए, है ना। तो भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं गीता में इन चार चीजों की आवश्यकता है, चाहे आप फैक्ट्री बना रहे हो या मंदिर बना रहे हो। तो अंतर यह है जब मंदिर बनता है कार्य है भगवान की खुशी है। तो आप सबसे छोटा सा निवेदन है, आप सब जुड़िए इस मंदिर को तैयार करने में, हमें पूरा विश्वास है ये मंदिर जल्द बन सकता है। मंदिर बनेगा, हजारों लोग आएंगे, आपकी जन्माष्टमी में भी बहुत लोग आए थे ना। मैं कल कारगर में था, कारगर में भी उन्होंने कहा कि 2.5-3 लाख लोग आए थे। आपका ये बड़ा सुंदर मंदिर है, आप सब जुड़िए इस सेवा में। भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते थे आप भगवान का मंदिर बनाओगे, भगवान आपके आपका घर बनाएंगे। अगर आप लोग मीरा रोड में एक कोठी लेकर खुश हो तो ठीक है, अगर आपको कोठी चाहिए वैकुंठ धाम में भगवान का मंदिर बनाइए, और भगवान का मंदिर बनाओगे तो भगवान उसके आभारी हो जाएंगे। तो सब जुड़ोगे इस सेवा में पक्का? आज कौन आते हैं, नोट किया? वो पीछे बैठे हैं, आपको पीछे बैठने की जगह आगे बैठना चाहिए। तो कौन कौन तैयार है सहयोग देने में मंदिर को तैयार करने में? सब मेहनत करोगे? ठीक है, अगले महीने आकर मैं देखूंगा क्या। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है,
हरे
कोई प्रश्न?
कोई प्रश्न है किसी का?
बहुत लेट हो गया है ना, 3:30 बज गया। बहुत छोटा लग गया, नहीं नहीं ठीक है ठीक है।
कठिन परिस्थिति में भी, कठिन परिस्थिति में भी भगवान,
कठिन परिस्थिति में भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ना चाहिए एक भक्त को, कैसे संभव? प्रश्न
कुंती महारानी, इनका प्रश्न ये था कि कठिन परिस्थिति में हमने कहा था कि भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए, ये कैसे संभव है? महारानी कुंती का की प्रार्थना भगवतम के प्रथम स्कंद में पढ़ते हो, जहाँ महारानी कुंती कहती है हे भगवान मेरे कष्टों को बढ़ाओ। ओ हम सब तो प्रार्थना करते हैं कष्टों को घटाओ, कुंती देवी के लिए कष्टों को बढ़ाओ। कहती है जितने कष्टों को बढ़ाओगे उतने ज्यादा मैं आपके चरण कमलों का स्मरण करती हूँ, जितने ज्यादा आपके चरण कमलों का स्मरण करूंगी उतनी जल्दी मुझे जन्म मृत्यु के बंधन से। तो अगर आप कठिन परिस्थिति में हो तो कुंती देवी की प्रार्थना पढ़ो। ओके, एनीथिंग एल्स?
और कोई प्रश्न?
तो आप में से कितने भक्त 16 माला का जाप कर रहे हो? कितने भक्त 16 माला का जाप नहीं कर रहे? कितने भक्त 8 माला के करीब रोज कर रहे हो? और कितने भाग 1 और 8 के बीच में हो? आपके चेहरे से आप सब ब्राह्मण दिखते हो मुझे। ब्राह्मण मतलब जो हमेशा सत्य का उच्चारण करता है। राम से कितने भाग तो जो बिल्कुल माला का जाप नहीं करते रोज? एक ही बात, दो बस, ये तो 3 बस, बाकी सब करते हैं कितना अच्छे। तो आप भक्तों से निवेदन है जो जप नहीं करते वो जप करना आरंभ कर दें, ठीक है, ठीक है। और जो एक से चार माला करते हैं वो थोड़ा बढ़ा दें। अगर आपकी आप नौकरी कर रहे हो और आपके सेठ कहें कल से तुम्हें तनख्वाह दुगनी, आप खुश हो गए? तो उसी प्रकार आपको खुश होना चाहिए जब आप जब बढ़ाओ। तो जो एक से चार कर रहे हैं उनसे निवेदन है आठ करें, जो आठ कर रहे हैं उनसे निवेदन बारह करें। रात में कितने भक्त हो जो भगवत गीता को रोज पढ़ते हो? सबके पास भगवत गीता है। ये भगवत गीता 70 से अधिक भाषा में प्रकाशित हुई है। तो अगर आपकी गुजराती है, हिंदी है, सब भाषा में उपस्थित है। और कितने भक्त आप में से श्रीमद् भागवतम रोज पढ़ते हो? और चैतन्य 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 तो गुजराती में है, और आप इसे कितने बार हर रविवार को आते हो मंदिर? तो आप सब भक्तों ने प्रयास करना है मंदिर को तैयार करने में, पक्का सब करोगे? हरे कृष्ण।
परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के मुख अरविंद से माता सुनीति का संदेश मिला, जिसमें माता सुनीति बताती है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति दयालु होते हैं, लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान से भी दयालु होते हैं और पूरे विश्व में इसी कारण से भ्रमण करते हैं। और इस प्रकार भ्रमण करते हुए आज हमारे मीरा रोड में भी आए हैं। वे जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान से भी ज्यादा दयालु हैं, तो उन पर दया करने के लिए महाराज यहाँ पधारे। उनके मुखारविंद से यह दिव्य संदेश हमें प्राप्त हुआ,
उनसे ज्यादा दयालु तो नहीं
है। बहुत आभारी हैं सभी भक्तगण, महाराज का आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र। स्वामी महाराज वर्तमान इस्कॉन के आचार्य हैं और गुरु भी हैं, और अपना पूरा जीवन प्रभुपाद जी के चरणों में समर्पित किए हैं। पूरे विश्व में बहुत प्रचार करते हैं। ये देखा जाता है कि भगवान के शुद्ध भक्तों के हृदय में जीवों का उद्धार करने के प्रति कितनी दयालु होता है। तो हम सब महाराज के बहुत आभारी हैं कि आज वो यहाँ आए और हमें दिव्य संदेश प्रदान किया। हरे कृष्ण। महाराज शाम तक रुकने वाले हैं, तो आप महाराज से जो भी इच्छा लेने के इच्छुक हैं जिनका इंटरव्यू हुआ है वो भी महाराज से आज मिलेंगे।
इंटरव्यू नहीं ले रहा,
ठीक है। तो पुनः एक बार गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की आभार व्यक्त करते हुए, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, भगवत पाद महाराज की जय, भगवत महाराज की जय।
कीर्तन करें, कीर्तन पांच
आते रविवार को प्रसाद बनाने और वितरण करने की सेवा इस ग्रेस बुक बनवाली प्रभु के काउंसिल ग्रुप द्वारा की जाएगी। और 13 तारीख शुक्रवार को राधा अष्टमी है, तो इस बार राधा गिरधारी मंदिर में राधाष्टमी का विशेष उत्सव मनाया जा रहा है। दो सत्र में, प्रातः काल के सत्र में भी अभिषेक होगा, प्रवचन होगा, और शाम के सत्र में भी ठीक 7:30 बजे गौर आरती के बाद पुष्प अभिषेक होगा, और उसके बाद सबके लिए प्रसाद रखा गया है। तो विशेष निवेदन है सभी भक्तों से कि प्रातः काल सेवा के लिए, प्रसाद बनाने की सेवा के लिए ठीक 10 बजे कुछ भक्त चाहिए प्रसाद बनाने के लिए, और शाम को 4 बजे
महाराज कीर्तन करना चाहते तो कृपया रुकिए
और महाराज थोड़ा कीर्तन करेंगे, तो आप सभी इस कीर्तन में भाग लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।